ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। श्रीमद्भागवतम स्कंध सात अध्याय आठ श्लोक संख्या 46-47 यही ना। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। विद्याधरा उचुः वेद्यां पृथक धारणयानुराधाम् नषेधयज्ञो बलवीर्य दृप्ता सयेन शङ्खे पशुबद्धतस्तम् माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम्। श्री विद्याधरा उचुः विद्यां पृथक धारणयानुराधाम् न्यषेधयज्ञो बलवीर्य दृप्तः सयेन शङ्खे पशुबद्धतस्तम् माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम्। श्री विद्याधरा उचुः विद्यां पृथक धारणयानुराधाम् नषेधयज्ञो बलवीर्य दीप्तः सयेन शङ्खे पशुबद्धतस्तम् माया नृसिंहं प्रणतास्म नित्यम्। श्री विद्याधरा उचुः विद्याधर लोक के निवासियों ने प्रार्थना की। विद्यां जो विद्याएं जिनसे प्रकट तथा अप्रकट हुआ जा सकता है पृथक भिन्न भिन्न धारणया मन के भीतर विविध ध्यानों से अनुराधाम प्राप्त किया गया निषेधत रोक दिया अज्ञः इस मूर्ख ने बलबीर यदृप्तः शारीरिक शक्ति तथा हर एक को जीत लेने की सामर्थ्य से फूल कर सह वह हिरण्यकश्यप जिसके द्वारा सख्य युद्ध में पशुवत पशु के समान हतः मारा गया, तम उसको माया नृसिंहम अपनी माया के प्रभाव द्वारा नृसिंह रूप में प्रकट होने वाले नृसिंह देव को प्रणता विनत स्म निश्चय ही नित्यम शाश्वत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इसमें केवल अनुवाद है तो एक और श्लोक दो श्लोक लेंगे। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की कि उस मूढ़ हिरण्यकश्यपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होने की हमारी शक्ति का प्रतिबंध लगा दिया था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। यहाँ से है विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की उस मूढ़ हिरण्यकश्यपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्यों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया जैसे वह असुर कोई पशु हो। भगवान नृसिंह देव के उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। 47 श्री नागा उचो ये न पापे न रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि न तद बक्षः पाटने नासं तदानन्दं नमस्तुते। नागलोक के वासियों ने कहा अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हम सबके प्राणों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांति पूर्वक नहीं रह सकता। पृथ्वी लोक के नीचे बसे नाग लोक के सभी वासी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्नियों का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकश्यपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थीं, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की मृत्यु से उन्हें राहत मिली थी। अब हिरण्यकश्यपु द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें आसुरी हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंध में बताया गया है कि कलियुग के सरकारी कर्मचारी उचक्कों तथा लुटेरों जैसे होंगे। इस तरह एक ओर प्रजा अन्न के अभाव से पीड़ित होगी, दूसरी ओर सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरे शब्दों में इस युग में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकश्यपु के साधन सिद्धांतों द्वारा उत्पीड़ित होंगे। तो श्लोक दोहराएंगे। नागलोक के वासियों ने कहा अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हम सबके फणों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है अतएव आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो प्रथम श्लोक संख्या 46 में विद्याधर लोग प्रार्थना की, हर लोक के वासी हिरण्यकश्यप के वध होने के बाद अलग अलग सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, पितर लोक, ये आप सुन चुके हैं, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ऋषि जितने भी लोक हैं इस ब्रह्मांड में, इंद्र समेत रुद्र ब्रह्मा सारे लोग भगवान ऋषि देव का अभिनंदन किए, उनका अनुमोदन किए, इस कार्य की प्रशंसा किए, साधुवाद दिए, ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपने जो कार्य किया है सर्वलोक का सुमंगलम, हर लोक के मंगल के लिए, हर जन जन आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जयघोष कर रहे थे, साधुवाद कर रहे थे। भगवान नृसिंहदेव के कर्म बहुत दिव्य दिव्य उन्होंने कार्य किया कि महान असुर हिरण्यकश्यप का वध कर दिए, जिसे पूरा ब्रह्मांड त्रस्त था, पूरे ब्रह्मांड के वासी उसके कार्यों से दुखी थे। तो भगवान नृसिंहदेव असुरराज हिरण्यकश्यप का वध किए तो सब लोग की प्रशंसा, उनके कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भी समाज में कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको लोग प्रशंसित पत्र देते हैं, अवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, बहुत अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार से, अनेक संस्थाएं भी उस कार्य की प्रशंसा करती, हर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस संसार में आदमी को कुछ काम करना चाहिए ताकि उसको लोग प्रशस्ति दें, उसको लोग प्रशंसा करें, ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग उसका नाम अच्छा से लें। कीर्ति अस्य सजीवति, कार्य ही लोगों को जीवित रखते हैं। आ कुछ लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, तो हिरण्यकश्यप के कार्य से सब लोग त्राहिमाम थे, सब लोग दुखी थे, सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन जब मारा गया तो सब लोग बहुत खुश हो गए। कोई मरता है तो लोग खुशी मनाते हैं, अब कोई मरता है तो लोग रोते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी नहीं जाना चाहिए था। अब कोई मरता है तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ मर गया, बहुत संताप दे रहा था। नीति शास्त्र में कहा कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरने के बाद लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको याद करें, उसके याद में लोग रोए कि बहुत अच्छा आदमी था, कुराना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद लोग गाली दें कि बहुत अच्छा हुआ चला गया मर गया। तो हिरण्यकश्यप जब मारा गया तो सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, ब्रह्मा जी से लेकर के शिव, इंद्र, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं सब लोग कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना की, हे प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, कोई भी आपके पराक्रम तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते, आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, लेकिन तो भी आप अव्यय बने रहते हैं, अव्यय, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, शिव जी भी प्रार्थना किए। शिव जी ने कहा कि कल्पकांत ही आपके क्रोध का समय होता है, कल्प के अंत में प्रलय होता है। शिव जी कहे कि कल्प के अंत में आप क्रोध करते हैं। अब जबकि यह नगण्य असुर हिरण्यकश्यपु मारा जा चुका है, हे भक्तवत्सल प्रभु कृपा करके उसके पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। शिव जी यह अपने क्रोध को शांत कर लीजिए, आपका तो क्रोध कल्पांत में होता है, कल्प के अंत में होता है, अभी प्रलय का समय नहीं है। भगवान नृसिंह देव इतने उग्र रूप में हुए थे मानो प्रलय हो जाएगा। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युर नमाम। इतना उग्र रूप था जैसा कि प्रलय हो जाएगा। तो शिव जी कहे कि मानो शिव जी समझाऊंगे कि भगवान भूल गए क्या कि अभी प्रलय नहीं करना है। अनु याद ले कि अभी तो प्रलय नहीं है, कल्पांत में आप तो क्रोध करते हैं, ऐसी क्रोधाग्नि तो प्रलय के समय होती है, आप भक्त प्रहलाद की रक्षा करिए, इस पर कृपा करिए। बहुत क्रोध में थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी डर गई थी, सारे देवता डर गए थे, उनके उस क्रोध को देखकर सब लोग डर गए थे, कोई जा नहीं रहा था, कोई स्वागत करने के लिए जा ही नहीं रहा था भय से। तब ब्रह्मा शिव आदि सोचे कि लक्ष्मी जी के पति हैं तो इनको भेजा जाए तो क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी कहिए आप जाइए, आपके पति हैं, इनके क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप देखा अद्भुत, तवकर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंग, भगवान के जो कमल जैसे हाथ हैं कोमल, वज्र जैसे उनके नखायुध बड़े विकराल थे, नख से ही भगवान चीर दिए थे, ऐसा रूप लक्ष्मी जी ने भी नहीं देखा था कभी। न दृष्ट पूर्वम, पूर्व में उन्होंने ऐसा नहीं रूप देखा था, अद्भुत रूप। न मृगम न मानुषम, प्रारंभ में हिरण्यकश्यपु ये एक ऐसा, महाराज कहते हैं किस चिड़िया घर से जानवर आ गया है। न मृगम न मानुषम, न मनुष्य है न पशु है, दोनों में है। भगवान पशु और मनुष्य दोनों के मिश्रित रूप धारण किए थे, हाफ लाइन हाफ मैन। तो लक्ष्मी जी क्या सारे लोग थे कि ये कैसा जानवर आ गया है। लक्ष्मी जी भी बोलते थे नहीं नहीं शायद हमारे पति नहीं हैं। लक्ष्मी जी बोलेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। महाराज एक लेक्चर में कहें कि मानो लक्ष्मी जी बोला कहीं नाखून मार देंगे तो मेरा भी हालत खराब हो जाएगा। इतना भयंकर नाखून था, अद्भुत श्रृंग। हिरण्यकश्यपु के वज्र जैसे वक्षस्थल को नाखून से ही चीर दिए भगवान। तो सब लोग दूर से प्रार्थना कर रहे थे कि शांत हो जाइए, अब बहुत हो गया। इंद्र भी सब लोग भयभीत हो गए थे। चारों शिव जी कहते कि अभी प्रलय का समय नहीं है, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। तब पितर लोक के सिद्ध लोक के विद्याधर नाग लोक के वासी सब लोग भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। विद्याधर के निवासियों ने कहा कि हे प्रभु आपने बहुत अच्छा काम किया, इस मूर्ख को आपने बद्ध कर दिया, अच्छा किया, ये बहुत बड़ा मूर्ख है, अपने पुत्र को ही मारने के लिए सारी शक्ति लगा दिया था, सारा बल ज्ञान जो भी इसके पास है सब चीज का प्रयोजन है अच्छा काम में लगाना चाहिए, अपने बल का ज्ञान का धन का प्रयोग करना चाहिए अच्छे कार्य के लिए, लेकिन इसने अपने सारे ऐश्वर्य को दुनिया को तपाने में लगा दिया था, इसका एक ही प्रयोजन था जो भी प्राप्त किया था तपस्या करके, धन बल जो भी, वो दुनिया को तपाने में, परेशान करने में लगा दिया था। यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी मारने के लिए बहुत जुगती अपने। अभी बहुत अच्छा किया है, यहाँ तक कि हम लोग पूजा भी नहीं कर पा रहे थे, न ध्यान कर पा रहे थे। हम लोगों की जो शक्ति थी कि कभी हम प्रकट होते थे, कभी अप्रकट हो जाते थे, हमारी शक्ति को भी परास्त कर दिया था ये। मैंने देवताओं में जो शक्ति थी, जो कार्य करने की शक्ति थी, सबका स्विच ऑफ कर दिया था। जितना भी सिद्धियां थी वो सब ये कर दिया, सबको अपने वश में कर लिया था। किसी का मिस्टिक पावर नहीं काम कर रहा था। कभी कभी लोग प्रकट हो जाते हैं, कभी अप्रकट हो जाते हैं, कभी बड़ा रूप ले लेते हैं, सब सारा चीज रिजर्व कर दिया था। सब कुछ पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, कोई पूजा नहीं कर सकता था, कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता था। उसको अपने बल का इतना घमंड था, विद्याधर के वासी करें कि इतना उसको घमंड था अपने बल का, अपने ज्ञान का, कि अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। जैसे नेता लोग महाराज को लेकर बोल रहे थे जुहू में कि जो हम लोग बोलते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, उससे उससे कोई टकराए भी तो चूर चूर हो जाते थे, इतना वज्र जैसा था। अन्यों को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था, सबको जीत लिया था। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका उसी तरह बध कर दिया जैसे वह असुर कोई पशु हो, पशुवत। शयन सख्य पशुबद्ध तस्तम, भगवान नृसिंहदेव पशु की तरह उसे मार दिए थे। जैसे कोई शिकारी जंगल में हिंसक पशुओं को मार देता है, शेर को, जब शेर कोई नरभक्षी हो जाता है तो शिकारी से मार देते हैं, जैसे रणभूमि में नृसिंह भगवान उसको पशु की तरह मार दिया था। शयन सख्य पशुबद्ध तस्तम माया नृसिंहम प्रणतास्म नित्यम। भगवान नृसिंहदेव की उस लीला रूप को सादर नमस्कार कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। भगवान की अद्भुत लीला, उन्हें पशु की तरह खेल खेल में उसको मार दिया था। नाग लोक के वासी कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है कि हम लोगों को मणियों को छीन लिया था। पृथ्वी के नीचे नाग लोक है जो बहुत ऐश्वर्यशाली है। नाग मणि होता है ना, नागों में मणि होता है। कुछ ऐसे नाग होते हैं जिनके सिर में मणि होता है, उससे प्रकाश होता है। तो नाग लोक में रहने वाले जो नाग थे वो स्तुति कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बहुत दुखी थे, हम लोगों के बहुमूल्य मणियों को छीन लिया था और साथ में हमारी पत्नियों को भी ले लिया था। हमारा धन, हम लोगों की सुंदर पत्नियों को छीन लिया था। हम बहुत खुश हैं कि आपने उसका वध कर दिया है। ए न पापे न रत्नानी स्त्री रत्नानी हृतानी न तद बक्ष पाटने नासाम दत्तानंदम नमस्तुते। नाग लोक के वासियों ने कहा कि अत्यंत पापी हिरण्यकश्यप ने हम सबके फणों की मणियां मणिधर होते हैं सांप, कुछ विशिष्ट सर्प होते हैं जो मणि धारण करते हैं, अब विशेष करके नागलोक में मणिधर। इस संसार में यहां भी नागमणि, पृथ्वी लोक में भी कोई कोई सर्पों में नागमणि पाया जाता है। नागमणि बड़े बड़े जंगलों में पुराने पुराने सर्प 100 वर्ष तक जो सर्प थे वो मणि धारण कर लेते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमको फोन किया, बोला मेरे पास मणि नागमणि है, बिछवा दीजिए। कितना का आया? तो 2500 करोड़, 500 करोड़ मिल रहा है। विश्वास में कहा कि ठीक है, बात करता हूँ। एक दो लोगों से बात भी गया, बोला कि आपको भी हम कुछ पैसे दे देंगे। एक बार और हमारे हम लोग के जुहू मंदिर में एक भक्त नागमणि खरीदा था 15 लाख में, और नकली था। वो लोग 2-3 लोग मिल करके नागमणि खरीदे नासिक के तरफ, और उसमें लाइट निकल रहा था। अब ले आए बाद में तो लाइट बंद हो गया। वो नकली था, वो फेरे में पड़ गए। वो लोग जहाँ से लिए थे वो तो सब जालसाजी वाले थे, उन लोगों का पैसा भी डूब गया सब। तो यहाँ भी नागमणि की चर्चा होती है बहुत सारे कहानियों में, पौराणिक कथाओं में भी हम नागमणि की बात सुनते हैं, और वर्तमान में भी नागमणि पाया जाता है, लेकिन बहुत इस समय कठिन है नागमणि प्राप्त करना। ऐसे हम लोग बचपन में सुनते थे अपने गांव में कि पहाड़ में एक नाग रहता था, रात में निकलता था, मणि रख करके अपना चारा प्राप्त करता था। जंगलों में ऐसा लोग कहते हैं कि चर्चा होती है। तो नागलोक में जो सर्प रहते हैं सबके पास अपना अपना बैटरी होता है, अपना अपना टॉर्च लाइट होता है, मणि होता है। सब लोग अपने अपने सिर में हेडलाइट लेकर चलते हैं। वो हेडलाइट है जैसे डॉक्टर लोग हेडलाइट यूज करते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए, या डेंटिस्ट लोग भी हेडलाइट रखते हैं। तो नागलोक में जितने नाग हैं सबके अपना अपना प्रकाश है, अपना अपना लाइट है, और उससे प्रकाश होता है नागलोक में। तो वहाँ सूरज नहीं है, पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं वहाँ सूरज नहीं है। तो नागलोक में सर्प बड़े बड़े विशाल सर्प रहते हैं, बहुत शक्तिशाली। भीम एक बार नागलोक में चले गए थे। एक बार भीम को दुर्योधन खाने के लिए आमंत्रित किया था। भीम बहुत खाते थे, कहीं देखते कहाँ से निमंत्रण आ रहा है। निमंत्रण आता था तो भाई लोग कहते मैं जाऊंगा, आप लोग रहो। हम लोग भी बचपन में कहीं से निमंत्रण आता था तो बोलते थे हम जाते हैं, हम जाएंगे। या हम लोग सोचते थे घर वाले कहते कि आप जाओ, वहां से निमंत्रण आया है खाने। निमंत्रण खाने के लिए साधु लोग भी बहुत भागते हैं, एक दिन में कई भंडारा अटेंड कर लेते हैं। एक नहीं, एक सूरत में हम लोग 13 जगह प्रोग्राम अटेंड किए थे, 13 प्रोग्राम सूरत में। सूरत जमण के लिए प्रसिद्ध है बोलते हैं ना, सूरत में जमण और काशी में मरण। तो काशी था इसलिए कहीं पानी, कहीं जूस, कहीं ड्राई फ्रूट, ऐसे हो गया 13 घर में गए। महाराज की कथा चल रही थी तो सबके घर में जाना था, 13 घर में गए हम लोग। शाम को चालू किए 8 बजे कथा के बाद, महाराज के कथा के बाद हम लोग 12, 12:30 बज गए रात। कहीं जाते थे पानी कहीं पी लेते, एकादशी था, 12:30 बज गए। एक भक्त का और रह गया घर, मुकुंद प्रभु का, जो इधर रहते हैं गौशाला इधर चलाते हैं ना। तो एक भक्त से हम कहे कि अब 12:30 बज गए अब चलना है, तो बोले नहीं वहां नहीं जाएंगे तो महाभारत से कम नहीं होगा। बोले उसके यहाँ नहीं जाएंगे तो महाभारत से कम नहीं होगा, जाना ही पड़ेगा। तो नाग लोक के जो रहने वाले नाग है बहुत समृद्ध हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, अमृत पीते हैं उन लोग। तो भीम को जब भोजन पर आमंत्रित किया था दुर्योधन तो विष दे दिया। भीम से ही भय होता था, दुर्योधन को ज्यादा भय भीम से होता था और पांडवों से भय नहीं खाता था, लेकिन भीम से बहुत भय, कि भीम कभी भी उसको पछाड़ देते थे, कभी भी उसको मारकर पछाड़ देते थे। लेकिन खाने के लिए आमंत्रित किया और ट्रिक से विष दे दिया। खाने के लिए बहुत लालची है, बृकोदर भीम कर्मा बृकोदर, भीम बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुभोजी। प्रभुपाल जी लिखते हैं भीम बहुभोजी हैं और बहुकर्मा, बड़े बड़े काम भी करते हैं। एक लेक्चर में महाराज कहें कि जितना भोजन बनता है उसका आधा भीम खा जाते थे और आधा में बाकी सब लोग उनके परिवार के लोग खाते थे। मतलब 500 चपाती बना तो 250 चपाती भीम खा गए। हमारे भोजपुरी में कहा था खाएं भीम आगे शकुनी, भोजपुरी में कहा होता है भीम खाते थे और डायरिया शकुनी को हो जाता था। लोक में ऐसी लोकोक्ति है। भीम को किसी से बर मिला था, कोई बोला कि बर मांगिए, ध्यान नहीं कौन बर दिए थे, कोई यक्ष ने बर दिया था कि आपके कार्य से हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ आपको बर देना चाहते हैं। तब भीम सोचे क्या बर मांगे, शकुनी बहुत परेशान करता है हम लोग को, पूरे परिवार को, कोई न कोई चक्रव्यूह में फंसा देता है, अधर्म पूर्वक युद्ध में भी हरा दिया, द्वितीय अधर्मेण जितस्य साधो, और अनेक प्रकार के कुछ न कुछ खुरापात करते रहता है। तब बर देना है तो ऐसा बर दीजिए कि मैं जो भी खाऊं मुझे उसका कोई रिएक्शन ना हो, उसका रिएक्शन मामा शकुनी के ऊपर हो। मैं मिर्ची भी खा लूं तो मेरा हजमा ना खराब हो शकुनी को। इसे लोक में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है लोकोक्ति है कि खाएं भीम आगे शकुनी। तो कभी कभी भीम ऐसा चीज खाते थे, ऐसा गरिष्ठ वस्तु खा लेते थे, कभी कभी मिर्ची खा लेते थे तो भीम शकुनी का पेट खराब हो जाता, कभी गोनी गोनी मिर्ची खा जाते थे, ऐसा मतलब ये था। इसीलिए भीम जो है बहुत खाते थे, ज्यादा खाएं कि अनपच जो है शकुनी को हो जाए। भीम कर्मा बृकोदर, भीम का हर कार्य बड़ा बड़ा है, शंख भी उनका बड़ा बजाए, महाभारत में बड़ा शंख बजाए, बड़ा बड़ा काम भीम किए हैं। से अब जाएंगे बद्रीनाथ में सरस्वती नदी में भीम पुल, बड़ा पहाड़ उठाकर रख दिया, पुल बन गया, न उसमें कोई आर्किटेक्चर जोत नहीं पड़ी, एक पहाड़ उठाकर रख दिए, भीम पुल सरस्वती नदी के ऊपर पुल बना दिए, एक पहाड़ उठाकर रख दिए, इसलिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो भीम नागलोक में चले गए, जब विष दे दिया दुर्योधन, विष पान करा दिया, मर गए तो उनको फेंक दिया गंगा में। गंगा के रास्ते गंगा सागर से जैसे भी नीचे चले गए, सारे समुद्रों का लिंक होगा कहीं ना कहीं से, गंगा सागर होते हुए नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में गए तो नागलोक उनको काटने लगे। तो विष का विष ही इलाज होता है, विषधर काट दिया तो उसका इंजेक्शन भी विष से ही बनता है, तो सर्पों के काटने से उनका विष जो है निकल गया। फिर चेतना में आ गए, चेतना में आ गए तो लगे नागों को मारने लगे, नागों को मारे तो नाग लोग भागे भागे, नागों के जो राजा थे क्या नाम था उनका, हैं बासुकी, सब लोग वहां भाग कर गए कि कैसा आदमी आया है, विचित्र बहुत बलवान है, चबलों को मार रहा है। तो वह नाग लोक का राजा जो था वो बड़े बड़े और बहादुर नागों को भेजा कि जाओ उसको नागपाश में बंदी बना कर ले आओ मेरे पास। बड़े बड़े अजय नाग जाकर के भीम को बंदी बना करके ले आए जो नाग लोक के राजा थे उनके पास। तो पूछे कि कहाँ से आए हो, तो आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपके पास आईडी है, कहाँ से आए हो, पास लेकर आए हो। बातचीत होने लगा तो नाग लोक के जो राजा बोले कि तो हमारे ही पूर्वज हमारे परिवार से ही आया है। वो जो राजा थे कौरवों के ही पूर्वज थे, नाम मुझे याद नहीं है, महाराज से हमने सुना है। जोर से बोलिए। अच्छा, उनके नाना के परिवार से थे। क्या नाम था, नाम नहीं मालूम। तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे वंश से आया है, तो बहुत खुश हुए, स्वागत किए, बंद कर दीजिए, बोल दीजिए बंद। तो बहुत खुश हुए क्योंकि आपका स्वागत है, और उनको अमृत पीने के लिए दिए, नागलोक में अमृत मिलता है, तो नौ कुंड अमृत पी गए। भीम तो खाने में बहुत हैं, माहिर हैं, एक के बाद एक ऐसे नौ कुंड अमृत पी गए। 1000 हाथी का बल था, 10000 हाथी का बल हो गया, बहुत सुंदर हो गया, पहले से 10 गुना बल भी ज्यादा हो गया। एक एक कुंड नौ कुंड का पान कर गए, और इस तरह से उनको नागलोक के राजा बहुत ऐश्वर्य दिए, बहुत धन दिए, मणि दिए, उनको स्वागत करके वापस भेज दिए। भीम वापस आ गए और शक्तिशाली हो करके, बड़ा ईश्वर के तो बहुत आश्चर्य हो गया। उधर पांडव लोग बहुत शोक में थे कि हमारा भाई कहाँ गया कहाँ गया, और दुर्योधन वो लोग बहुत खुशी मना रहे थे। भीम वापस आ गए तो वो लोग बोलते हैं ये कैसे आ गया वापस, मर करके जीवित हो गए और ज्यादा बल भी हो गया, भगवान की कृपा जिस पर होगी वो मर कर भी जीवित हो जाता है, और ज्यादा शक्तिशाली हो गए, उनके लिए वरदान साबित हो गया। कहने का अभिप्राय कि नागलोक में बहुत ऐश्वर्य है, बहुत पीने के लिए भी अमृत है, मणियां हैं, और मणियों से ही वो प्रकाशित होता है नागलोक। नागलोक के वासी बहुत दुखी थे, हिरण्यकश्यपु ने सबका मणि ले लिया था, जो मणि धारण करते थे मणिधर थे, सब लोगों का मणि छीन लिया था, और सर्प बिना मणि का तो बेकार रहता है, सर्प का मणि कोई ले ले तो उसका जीवन मर ही जाते हैं प्रायः। मणि वाला सर्प का अगर मणि ले लिए तो मर जाता है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो मर जाती, वैसे मणि सर्प से ले लिए तो मर ही जाता है प्रायः। तो बिना मणि के उनका तेज निस्तेज हो गया था, उनकी पत्नियों को भी छीन लिया था, पत्नी और मणि से च्युत हो गए थे, तो बहुत दुखी रहते थे वो लोग। गृहस्थ है, गृहस्थ की पत्नी कोई ले जाए तो सबसे बड़ा दुख है, गृहस्थ के बाद स्त्री न हो और धन न हो तो गृहस्थ का जीवन बहुत संकट में हो जाता है। गृहस्थ है पैसा भी नहीं है और पत्नी भी नहीं है तो बहुत दुख होता है। कभी कभी गृहस्थ की पत्नी मर जाती है पैसा भी नहीं तो सन्यासी बन जाते हैं कि चलो सन्यास हो जाएंगे तो खाने को इधर उधर भंडारा मिलेगा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मर गई पैसा भी नहीं है तो सन्यास। उद्देश्य क्या है कि खाना पीना अच्छा होगा, दान दक्षिणा मिले। तो नाग लोग के वासी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, उनका वापस धन स्त्री मिल गया तो बहुत खुश हुए लोग, सबसे ज्यादा खुशी मनाए, बोले प्रभु हम लोग बहुत दुखी थे, हम लोगों का सब कुछ ले लिया था। अलिन सर्वस्व अरुणारी, जैसे सुग्रीव जी कहे ना भगवान राम से कि प्रभु बाली मेरा भाई है लेकिन मुझे बहुत मार मारा और मेरा सब कुछ ले लिया, राज स्त्री सब ले लिया। और सुग्रीव बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर आते थे, भगवान से कहे कि मेरी पत्नी को मेरा राज्य सब ले लिया। हरली ने सर्वस्वर नारी, वैसे नाग लोगों के ऊपर भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया, उनका खोया हुआ धन उनकी स्त्री को वापस करा दिए बध करके। इस तरह से सारे लोग स्तुति कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, हम लोगों का जीना दुबर कर दिया था, हम लोग जीवित ही मरे जैसे थे, सांस लेना भी ये था, उसके राज में रोना भी गुनाह था, हम लोग न रो पाते थे न कुछ कह पाते थे, कोई अपना कष्ट भी नहीं सुना पाता था। ये न पापे न रत्नानी, नागलोक के वासी जो नाग के सदृश ही दिखते हैं, नाग के सदृश दिखते हैं लेकिन वास्तव में नाग नहीं है, जैसे किम पुरुष, किम पुरुष लोक में वहाँ के लोग बंदर जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में बंदर नहीं, जैसे हनुमान जी किम पुरुष लोक में भगवान राम की आराधना करते हैं, देखने में ऐसा मुंह लगता है कि बंदर है वास्तव में लोग देवता हैं, तो वैसे ही देखने में नाग के सदृश लगते हैं नाग लोक के वासी। लोग कहेंगे पापे न, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु को आपने वध किया है, हम आपके बहुत ऋणी हैं, आपने बड़ी कृपा की हम लोगों पर कि हम लोगों के पत्नियों को भी ले गया था, हमारा सब कुछ ले लिया था, हिरतानी हमारा सब कुछ हर लिया था, आपने उसके वक्षस्थल को चीर दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। नागलोक के वासियों ने कहा कि अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु ने हम सबके फणों की मणियों तथा हम सबकी सुंदर पत्नियों को छीन लिया था, अब चूंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतः आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण हैं, अतः आप हमारी पत्नियों की क्या उनके भी तो खुशी के कारण है, केवल पत्नियों की ही थोड़े हैं, पति पत्नी सब बहुत खुश हो गए थे, उनकी पत्नियां तो खुश थी, नाग लोक के वासी कहेंगे हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के आप कारण हैं, इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग तो आज तक भी रोज करते हैं ना नरसिंह भगवान को नमस्ते नरसिंहाय, आज तक भगवान नरसिंह देव के कार्यों की प्रशंसा भक्त लोग करते हैं, आद्यवंत उसका कोई आदि अंत नहीं है, जब तक भक्त रहेंगे तब तक नरसिंह देव की आराधना भक्त लोग करते रहेंगे कि नरसिंह देव का बहुत बड़ा उपकार है, विशेषकर भक्तों के ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, भक्तों को भय को दूर करते हैं। सिंहनादेन महता दिग्दंती भयनाशनम, सारे भय को दूर करते हैं। प्रहलाद बरदम श्रीषम दैतेश्वर विदारणम, ऐसे दैत्य राज असुर को भगवान ने मारा और सारे भक्तों के ऊपर आए संकट को दूर किए, आज तक भी रोज भी भक्तों की रक्षा भगवान नृसिंह देव करते हैं, इसलिए हम लोग नमस्कार करते हैं। तो नाग लोक के वासी है कि प्रभु हम लोग आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हम लोग के ऊपर महान संकट को दूर किया है, हमारा खोया धन और पत्नी वापस करा दिए, उस महान असुर का वध किए, तो हम लोग आपको नमस्कार करते हैं बार बार हजार बार करोड़ बार पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, अर्जुन कहे ना कि आपको बार बार हम नमस्कार करते हैं, इतो नृसिंह पर तो नृसिंह यतो यतयामि ततो नृसिंह, इस तरह से सारे बड़े बड़े देवता सब लोग भगवान नृसिंह के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं सारे देवता, सारे लोक के वासी, आपने बहुत बड़ा काम किया, पूरे ब्रह्मांड को तपा दिया था, हिला दिया था, सबको जला रहा था, आपने ऐसा कार्य किया कि सब लोग सुखी हैं, सब लोग, सबका संकट दूर हो गया। तो नरसिंह देव के कार्यों की सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। आगे अब आप सुनेंगे श्री मनोमा हुचू, अब मनु लोग क्या प्रार्थना करें वो कल आप सुनेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।